वैश्विक अध्यापक पुरस्कार 2020 के विजेता रंजीत सिंह डिसले का कहना है कि दुनिया को 21वीं सदी के शिक्षकों की आवश्यकता है और जीवन में टेक्नोलॉजी की बढ़ती भूमिका के मद्देनज़र शिक्षकों को भी कक्षाओं में प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल बढ़ाना होगा। भारत में महाराष्ट्र प्रदेश के सोलापुर जिले के परितेवाड़ी गांव में सरकारी स्कूल में अध्यापक रंजीत सिंह डिसले को शिक्षा से परे जाकर समाज में बदलाव लाने की उनकी कोशिशों के लिए ब्रिटेन में वर्के फाउंडेशन और संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को ने हाल ही में पुरस्कृत किया है। इस पुरस्कार के लिए 140 से अधिक देशों के 12,000 से अधिक शिक्षक नामांकित किए गए थे। रंजीत सिंह डिसले ने परिवर्तन लाने के लिए नई भाषा सीखी, छात्रों को शिक्षा में मदद करने के लिए डिजिटल तकनीक इस्तेमाल करने के तरीके ढूंढे और ख़ास तौर पर लड़कियों की शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए असीम प्रयास किए। हमारी सहयोगी अंशु शर्मा ने उनकी इस असाधारण शिक्षा मुहिम के बारे में बातचीत की।
इतना बड़ा सम्मान पाने के लिए बधाई, ये उल्लेखनीय उपलब्धि आपके लिए क्या मायने रखती है? उस क्षण के बारे में बताएं जब इस पुरस्कार की घोषणा की गई थी।
ये सम्मान ये मेरे लिए, मेरे ख्याल से टीचिंग कम्युनिटी के लिए काफी अहमियत रखता है, काफी मायने रखता है, क्योंकि ये अवार्ड टीचर्स को वो सम्मान देता है जो सम्मान के वो हकदार होते हैं। आई स्टिल रिमेम्बर कि जब वो घोषणा की गई कि रंजीत डिसले फ्रॉम इंडिया इज द विनर ऑफ ग्लोबल टीचर प्राइज, सो उस वक्त तो मेरी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। आपने देखा होगा विजुअल्स में कि कैसे मैंने मेरे मामा को हग किया। वो काफी यादगार क्षण है मेरे जीवन के। कि अवार्ड ये रंजीत डिसले को मिला है ऐसा नहीं लगा, ये सब टीचर्स को ही मिला ऐसा उनको लगने लगा। सोशल मीडिया में उसी तरीके का माहौल था, सभी टीचर्स को लगा कि आई एम द विनर। तो ये भावना टीचर्स में जगना और सोसाइटी को भी बिलीव होना कि गवर्नमेंट स्कूल में टीचिंग काफी अच्छी तरीके होती है, तो मेरे ख्याल से ये अवार्ड जो है वो गवर्नमेंट स्कूल का स्टेटस चेंज करने के लिए भी, बदलाव लाने के लिए भी काफी अहमियत रख रहा है।
तो एक शिक्षक के रूप में आपका सफर कैसे शुरू हुआ और आप इस मुकाम तक कैसे पहुंचे, अपनी कहानी बताइए हमें।
आपको अगर सच में बताऊं तो मैंने कभी भी सोचा नहीं था कि मैं एक टीचर बन जाऊंगा। मेरा तो बचपन से सपना था कि मैं एक आईटी इंजीनियर बन जाऊं। बचपन से ही मुझे टेक्नोलॉजी से काफी लगाव था और मैं टेक्नोलॉजी से जुड़ा कुछ ना कुछ बातें किया करता था, कुछ ना कुछ इनोवेशन करता रहता था। तो आईटी इंजीनियर जो था ये मेरा पहला, सबसे पहला और बहुत सालों तक मैंने दिल में रखा हुआ सपना था, मगर कुछ दुर्भाग्यवश वो मैं पूरा नहीं कर पाया। मेरे पिताजी जो हैं वो, उन्होंने मुझे टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज में दाखिल करने के लिए एडवाइस किया, सलाह दी थी। तो वहां के जो टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज में जो टीचर्स थे उन्होंने मेरे में काफी बदलाव लाए। तो वो एक्सपीरियंस करने के बाद मैंने ही सोचा अगर मुझे इतना एक्सपीरियंस हुआ है तो क्यों ना मैं बाकी लोगों को भी ये एक्सपीरियंस दे और उनकी लाइफ जो है चेंज करूं। और फिर बाद में मेरी पढ़ाई खत्म होने के बाद 2009 में मुझे जिला परिषद स्कूल परितेवाड़ी में अपॉइंटमेंट दिया गया और वहां से मेरा जर्नी जो है एज अ टीचर स्टार्ट हुआ।
असली चुनौतियां तो तब शुरू हुई होंगी, तो उन चुनौतियों को कैसे आप पार करते हुए आगे बढ़े और क्या किस तरह की चुनौतियां सामने आई और क्या कभी ऐसे क्षण आए जब सब कुछ छोड़ देने का मन किया हो?
मुझे अभी भी याद है पहला दिन 5th of January 2009, और जब मैं स्कूल में गया तो मेरे हेडमास्टर जी मुझे लेके गए मेरे क्लासरूम में और बोले कि सर ये आपका क्लासरूम है। और क्लासरूम का स्टेटस देख के मुझे तो किसी को भी ये नहीं लगा होगा कि ये क्लासरूम है। मैंने तो बोला सर ये तो एक काउसेड लगता है और ये आप कैसे बोल रहे कि क्लासरूम है। और उससे भी इंटरेस्टिंग और सरप्राइजिंग शॉकिंग बात थी कि पेरेंट्स लोगों को भी इसके बारे में कुछ नहीं कहना था। वो उनको पता ही नहीं था कि एजुकेशन, शिक्षा का क्या अहमियत है और क्या होनी चाहिए। तो यहीं से चुनौतियां स्टार्ट हो गई। सबसे बड़ी चुनौतियां थी कि पेरेंट्स का अनअवेयरनेस, शिक्षा के प्रति उनका कोई भी, मतलब उनको मालूम ही नहीं था कि क्या चेंजेस वो ला सकते हैं। तो वो अवेयरनेस क्रिएट करना, सेकंड था अटेंडेंस बच्चों, क्योंकि क्लासरूम का स्टेटस देख के, सिनारियो देख के कोई भी वहां पे पढ़ने का मन नहीं करेगा, तो वो अटेंडेंस ये भी मेरे लिए काफी बड़ी समस्या थी। और तीसरा था स्टूडेंट्स का परफॉर्मेंस, एकेडमिक परफॉर्मेंस, जहाँ पे उनको एनुअल टेस्ट होते थे, उनका इवेल्युएशन होता था, तो उस दौरान भी बच्चों का परफॉर्मेंस काफी लो था। अब ये जर्नी को मैं जब 12 साल पीछे से जाके देखता हूँ, तो मुझे लगता है कि ये जर्नी स्टार्ट हुई काउशेर से, अब पहुंची है ग्लोबल क्लासरूम तक।
मोस्ट एक्सेप्शनल एजुकेटर, एक शिक्षक जो खाली शिक्षा नहीं दे रहा था बल्कि शिक्षा से आगे बढ़कर समाज में बदलाव ला रहा था, तो वो कौन से काम है, अगर आप हमें कुछ उदाहरण दे सकें, वो कौन से काम है जिनको लेकर आपको ये सम्मान मिला है, और किस तरह से उस उन कार्यों के जरिए आपने उस इलाके में बदलाव लाए हैं?
तो जैसे ही मैं 2009 में वहां पे गया था, तो जहां पे जिस दिन मैंने देखा था कि लड़कियों की शिक्षा काफी अहमियत दी नहीं जाती थी, तो लड़कियों का महत्व इतना ही था कि वो अपने घर पे कुकिंग करे, घर का सारा काम करे, और जो उनके छोटे छोटे भाई बहन हैं उनकी वो देखभाल करे, और बाद में बड़े होने के बाद वो अपने घर जाए, शादी करके घर जाए। तो सबसे पहले हमने क्या किया कि ये लड़कियों की शिक्षा के लिए पेरेंट्स में कम्युनिटी में कम्युनिटी एंगेजमेंट प्रोग्राम स्टार्ट किया। तो मैं बाहर के गांव की, दूसरे गांव की या सिटीज की लड़कियां जो शिक्षित होके, कोई डॉक्टर हैं, कोई इंजीनियर हैं, कोई पुलिस हैं, तो उनको मेरे स्कूल में इनवाइट करता था और पेरेंट्स के साथ इंटरेक्शन प्रोग्राम रखता था, और वो लड़कियां अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करती रहती थी। तो उन्होंने पेरेंट्स के सामने एक रोल मॉडल का, रोल मॉडल की तरफ पेश आ गई, और पेरेंट्स को मैं बताता रहा अगर ये लड़की कर सकती है तो आपकी क्यों नहीं कर सकती है, उसको जो उसके माता पिता ने दिया है तो वो आप क्यों नहीं दे सकते हैं। तो वो थॉट प्रोसेस मैंने उनके दिमाग में डालना स्टार्ट किया, और धीरे धीरे उनको भी समझ में आ गया कि लड़कियों को घर पे बिताने से अच्छा है उनको शिक्षित करें, अगर वो शिक्षित हो जाए, अपने पैरों पे खड़ी हो जाए, तो उनका भी भविष्य उज्जवल हो जाएगा, हमें भी उसका और उनकी फैमिली को भी फायदा हो सकता है। और फिर मैं क्या रहा, लड़कियों का और बच्चों का अटेंडेंस स्कूल में ज्यादा बढ़ाने के लिए आई थॉट ऑफ यूजिंग टेक्नोलॉजी। तो मैंने एक लैपटॉप खरीदा उस वक्त, और वो लैपटॉप लेके मैं स्कूल में जाता था, और फिर सबको हम क्या करते थे, हम लैपटॉप पे मूवीज देखते थे, गाने देखते थे, डांस करते रहते थे, तो हम क्लास में पूरा इंजॉय करते रहते थे, जितने भी बच्चे क्लास में आते थे वो सब इंजॉय करते रहते थे, और फिर वो घर जाके बताते थे कि आज हमने ये वाली मूवी देखी, हम कल ये देखने वाले हैं, हमने इतना मजा ले लिया, स्कूल इज वेरी इंजॉइंग प्लेस, स्कूल ना मतलब काफी जॉयफुल प्लेस है। तो जो स्कूल में नहीं आते थे उनको भी उनके दिमाग में चलने लगा, मेरा दोस्त स्कूल में जाके इतना आनंद उठा रहा है तो मैं यहाँ कितना कष्ट उठा रहा हूं, तो इससे तो बेहतर है मैं स्कूल में जाऊं और वहां पे एंजॉय करूं। तो उनके लिए स्कूल एक एंटरटेनमेंट की जगह थी, और वो इसी तरीके से वो टेक्नोलॉजी ने मुझे हेल्प किया टू इंक्रीज द अटेंडेंस, वो धीरे धीरे अटेंडेंस बढ़ती रही। अब जब बच्चे और लड़कियां स्कूल में आने लगी तो अब मुझे वो एंटरटेनमेंट की जगह एजुटेनमेंट में बदलनी थी, तो मैंने वहां पे जो मूवीज बच्चे देखते तो उन्हीं का वो विजुअल मेमोरी का इस्तेमाल करने का सोचा, और उसी को ध्यान में रखते हैं मैंने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाए स्कूल के लेसन के ऊपर, मेरे खुद के वीडियोस मैंने रिकॉर्ड किए, और बाकी कुछ यूट्यूब से लाए, उसमें मैंने मेरे खुद का वॉइस ओवर दिया, और ऐसा डिजिटल कंटेंट मैं बच्चों के साथ शेयर करता रहा, उनके माता पिता के मोबाइल्स के थ्रू वो शेयर करते थे। तो कुछ वक्त क्या होता था, कभी कभी वो डिजिटल कंटेंट जो है मोबाइल फॉर्मेट सपोर्ट नहीं कर पाता था, कभी कभी फाइल करप्ट हो जाती थी, तो प्रॉब्लम्स तो हमें आते रहते थे, और इसका सॉल्यूशन क्या निकाला जाए ये दिमाग में जब मैं रखे गया था रखता था, तो क्या हो सकता है उसका बेटर सॉल्यूशन। तो जब एक दिन मैं एक दुकान में गया तो जहां पे मैंने देखा कि उस शॉपकीपर ने, दुकानदार ने प्रोडक्ट के ऊपर का एक कोड स्कैन किया और जैसे उसका प्राइस और डिटेल्स स्क्रीन के ऊपर आया, तो वही क्षण मेरे दिमाग में क्लिक हुआ कि क्या ये हम शिक्षा में भी कर सकते हैं क्या। घर आके मैं गूगल पे सर्च किया कैसे हम क्यूआर कोड तैयार कर सकते हैं, कैसे उसमें डिजिटल कंटेंट एम्बेड कर सकते हैं। तो असल में जो मैंने डिजिटल कंटेंट बनाया था वो अब मैंने उस क्यूआर कोड में एम्बेड किया, और वो फिर ये 27 क्यूआर कोड जो है ना, क्यूआर कोड ये मैंने स्टिकर पेजेस पे प्रिंट किए और वो बच्चों के पेजेस टेक्स्ट बुक के हर एक पेज के ऊपर वो चिपका है। अब बच्चों को सिर्फ उसको स्कैन करना था और कंटिन्यू करना था एजुकेशन। एक चैप्टर था, वीडियो होगा, कविताओं का ऑडियो फॉर्मेट होगा, तो वो लाइक पर्सनलाइज लर्निंग एक्सपीरियंस होते हैं। अब बच्चे घर बैठे भी अपनी शिक्षा कंटिन्यू कर सकते थे। जस्ट वीडियो देखना नहीं था या ऑडियो फॉर्मेट सुनना नहीं है, बाद में वो कॉन्सेप्ट उनको समझ में आए हैं नहीं, इसका मुझे इवेल्युएशन करने के लिए मैं उनको एक ऑनलाइन टेस्ट देता था, और उस टेस्ट में उनके मार्क्स देख के उनका प्रोग्रेस हम देखते थे कि कैसे उन्होंने वो चैप्टर वो कॉन्सेप्ट समझी है या नहीं है। तो धीरे धीरे ऐसे ऐसे इनिशिएटिव्स हम लेके गए कि जिससे लड़कियों की शिक्षा के लिए काफी फायदा हो।
तो ये शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए जो असाधारण प्रयास आप कर रहे हैं, इसकी प्रेरणा कहाँ से मिलती है? आगे बढ़ने का साहस कैसे मिलता है?
ऐसा ऐसा बोलते हैं ना कि विपरीत परिस्थितियों में ही काम करने का मजा कुछ और होता है, और बाद में जो सक्सेस मिलते हैं उसका स्वाद कुछ अलग ही होता है। मेरे ख्याल से मेरे सामने जो विपरीत परिस्थितियां हैं दे ऑलवेज ये यही मुझे प्रेरणा देती रहती है।
आपने ये भी घोषणा की है कि आप अपने $10 लाख का जो पुरस्कार है उसका आधा हिस्सा अन्य 9 फाइनलिस्टों के साथ साझा करेंगे। इसके पीछे क्या सोच है, और बाकी की जो पुरस्कार राशि है जो आपकी है उसके लिए क्या योजना है आपकी, उससे क्या करेंगे?
टीचर्स ऑलवेज शेयर, दे शेयर द नॉलेज, अपना ज्ञान साझा करते हैं, अपना स्किल, उसका माइंडसेट, इंफॉर्मेशन, ये सब साझा करते रहते हैं। तो व्हाई डोंट वी शेयर द प्राइस मनी एज वेल? सो क्योंकि ये जो 9 टीचर्स हैं उनका भी काम उतने ही मायना रखता है जितना मेरा काम है, क्योंकि ये 9 लोग टीचर्स भी क्या करेंगे, उनके स्कूल में उनकी कंट्रीज के बच्चों के लिए प्राइस मनी यूज होगी, तो अल्टीमेटली इसका लाभ दुनिया को भी होगा। ये द वर्ल्ड इज माई क्लासरूम, ये दुनिया ही मेरा क्लासरूम है, तो ये दुनिया भर के बच्चे मेरे भी बच्चे हैं, मेरे ही स्कूल के बच्चे हैं, तो उन बच्चों की तरफ, उन बच्चों को प्रेरित करने के, उनके जीवन में कुछ बदलाव लाने के लिए अगर ये 9 टीचर मेरा साथ दे सकते हैं तो वो साथ देने के लिए मैंने, हम सब मिलके ये काम आगे ले जा रहे हैं, और इसी के लिए ये प्राइस मनी उनके साथ शेयर की है। बाकी जो 50% मुझे मिलेगा उसमें से 20% जो है वो मैं लेट्स क्रॉस द बॉर्डर्स प्रोजेक्ट के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये प्रोजेक्ट हम दुनिया के जो अशांत देश होते हैं, इंडिया पाकिस्तान, इजराइल पैलेस्टाइन, इराक ईरान, ये झगड़ते रहते हैं एक दूसरे के साथ, और मिलियंस ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स उन्होंने खर्च किए हैं फिर भी झगड़ रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि ये इन्हीं देश के बच्चे नॉन वायलेंस का प्रिंसिपल फॉलो करें, बिकॉज द मोस्ट पीसफुल करें, एक दूसरे के साथ डायलॉग बनाते रहे, फ्रेंडली रिलेशन बनाए, और अल्टीमेटली इस दुनिया को एक पीसफुल, एक शांततामय नागरिकों की जरूरत है, तो वो नागरिक हम इस प्रोजेक्ट के थ्रू हम नर्चर कर रहे हैं। और बाकी जो 30% प्राइस मनी होगा उसको हम टीचर्स इनोवेशन फंड में इस्तेमाल करेंगे।
अन्य शिक्षकों को कुछ संदेश देना चाहेंगे क्या?
हमें इस दुनिया को जरूरत है 21वें सदी की टीचर्स की, भविष्य जो है वो टेक्नोलॉजी के हाथ में है, तो टीचर्स ने भविष्य को देखते हुए टेक्नोलॉजी को क्लासरूम में, शिक्षा में इस्तेमाल करने के लिए ज्यादा से ज्यादा प्रयास करने होंगे, और खुद को उसके लिए एक सक्षम टीचर बनाना होगा, तभी हम जाके 21वें सदी के टीचर्स बन सकते हैं।